from the conference center.
Public center ke Temple Square ke conference center se 176 general conference hai Church of Jesus Christ of Latter Day Saints ki. Jawan vyaktiyon ko general authorities aur girja ke general officer room mein se chuna gaya hai. Aur Sangeet Movement Tabernacle Choir dwara diya jayega. Duniya bhar se sadasya aur officer girja ke netaon se shishya paane ke liye aaye hain. Is broadcast ko Bonneville Communication.
This broadcast
ko Bonneville Communication ek public seva ke roop mein de raha hai. Bina izazat ke recording, copying aur dusre istemal mana hai. Without written consent is prohibited.
Thomas S. Monson,
जो पहले प्रेसिडेंसी में पहले काउंसलर है, वो इस सेशन को कंडक्ट करेंगे.
We welcome you
to आपको इस चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स के 176 जनरल कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन में स्वागत करते हैं. प्रेसिडेंट गॉर्डन बी हिंकली, जो इस कॉन्फ्रेंस के प्रधान हैं, उन्होंने मुझे ब्रदर मॉन्सन को इस सेशन को कंडक्ट करने के बोला है. हम इस कॉन्फ्रेंस सेंटर और असेंबली हॉल में उपस्थित जनरल अथॉरिटीज का अभिनंदन करते हैं और रिलीफ सोसाइटी, नव युवकों, युवतियों, संडे स्कूल और प्राइमरी जनरल प्रेसिडेंसीज की भी अभिनंदन करते हैं. हम सरकार, शिक्षा और सिविक लीडरों का खास स्वागत करते हैं. हम टेलीविजन, रेडियो स्टेशनों, सैटेलाइट और केबल सिस्टमों के मालिकों और काम करने वालों को धन्यवाद देते हैं जो इस कॉन्फ्रेंस को दुनिया भर पहुंचाने के लिए एक पब्लिक सेवा कर रहे हैं. हम खुशी से कहते हैं कि इस कार्यक्रम को इंटरनेट द्वारा lds.org पर भी देखा जा रहा है. इस सेशन के लिए संगीत टैबरनेकल क्वायर द्वारा दिया जाएगा क्रेग जोसेफ और मैक वुलबर्ग के निर्देशन में. रिचर्ड एलियट ऑर्गन पर होंगे. क्वायर ने इस सेशन को शुरू किया अराइज ओ गॉड एंड शाइन गाकर और अब We ever pray for thee, gaenge. Fifth Elder Merrill J. Bateman, 70 ke presidency ke prarthna karenge.
Our Father in heaven,
with humility and joy in our hearts, we approach Thee at the end of this great and wonderful general conference. ये बढ़िया जनरल कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में यहाँ पे हजारों लोग आए हैं और लाखों भाव भी हैं. हम आपको एक्नॉलेज करते हैं हमारे भगवान को. हम अपने अभाव मानते हैं हमारे सेवियर जीसस क्राइस्ट का और उसके त्याग के लिए. हम आभारी हैं कि इस गॉस्पल को वापस लाया गया है हमारे लिए और हम अपने संदेशता जोसेफ स्मिथ के लिए आभारी हैं और जो प्रीस्टहुड कीज वापस की हैं हमारे लिए और हमारे संदेशता गॉर्डन बी हिंकली के लिए. हम आभारी हैं कि हमारे प्रॉफिट जोसेफ हिंकली के लिए. हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और कि आप उन्हें शक्ति दें जैसे वे इसमें भाग लेते हैं. हम शुक्रिया देते हैं उन सब लोगों के लिए जो आज हमारे साथ बात करेंगे और कि हम और पवित्र आत्मा हमें उनके लव्स समझ में आएंगे. हम शुक्रिया मंद हैं अपने आशीर्वादों के लिए और इसके संगीत के लिए. हम प्रार्थना करते हैं देशों के लिए. हम प्रार्थना करते हैं कि वो गॉस्पल को सुनाई देने के लिए राजी होंगे. आपका चर्च यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा दुनिया भर में. अब हमारे साथ रहो इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा और उन चर्चों में रहो यहाँ पे लोग सुन रहे हैं आपकी बात. अब हम ये जीसस क्राइस्ट के सम्मान में बोलते हैं आमेन.
We shall now hear
हमारे प्यारे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट गॉर्डन बी हिंकली से सुनेंगे. प्रेसिडेंट हिंकली के बाद क्वायर फिर गाएंगे Each life that touches ours for good. प्रेसिडेंट हिंकली.
My brothers and sisters,
मेरे भाइयों और बहनों, जैसे हम एक और गिरजे के जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा होते हैं, मैं खुशी से कहता हूँ कि गिरजा शक्ति और प्रभाव में भर रही है. 1982 में कुछ 24 साल पहले मैंने जर्नल में लिखा, अक्टूबर की जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए सैटेलाइट के 300 कनेक्शन है. उसका मतलब है कि देश भर 300 स्टेक सेंटरों में लोग इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकेंगे. मुझे यह कहा गया है कि अब गिरजे के पास 6,066 सैटेलाइट के कनेक्शन कुछ 83 देशों में है. मैं आभारी हूँ कि सदस्यों के बढ़ने के साथ हमारी उनके दुनिया भर बात करने की शक्ति भी बढ़ गई है. अब हम यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में कुछ और बैप्टिज्म की चाह कर सकते हैं, पर वो दुनिया की किसी भी भाग के बारे में कहा जा सकता है. पर फसल बड़ी है. कुछ 160 देश में सदस्य हैं. कुछ समय पहले बहुत कम लैटरडे सेंट थे. आज वहाँ बड़े वार्ड और स्टेक हैं और नेतृत्व में लायक लोग हैं. पर हमारे यात्रा के स्थानों पर थोड़ी बंदिश है, पर उसकी जगह पहली प्रेसिडेंसी 12 के सदस्य और 70 के सैटेलाइट के द्वारा दुनिया भर लोगों से बात कर सकते हैं। समय बदलता है पर संदेश नहीं। हम बयान देते हैं कि स्वर्ग खुल गया है और कि अनंत पिता भगवान और उनके बेटे उठे हुए राजा प्रकट हुए हैं और बोले हैं। हम बयान देते हैं कि प्रस्तुत को विस्थापित करा गया है अनंत आशीर्वादों के चाबियों और शक्ति के साथ। हमने हाल में सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया टेम्पल को उद्घाटन किया जो उस स्टेट में सातवां और विश्व में 123rd है। हमने एक और के लिए सॉल्ट लेक के इलाके में काम चालू किया है। हम खुशी से बताते हैं कि सॉल्ट लेक टैबरनेकल का काम अच्छे से आगे बढ़ रहा है और ये बढ़िया इमारत जल्द ही टैबरनेकल क्वायर के हर हफ्ते के प्रसारण को कर सकेगी। गिरजा के एक बहुत बड़े कार्य में लगा है ताकि टेम्पल स्क्वायर के वातावरण को बचाया जाए। उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे पर टाइडिंग के पैसों को उसके लिए इस्तेमाल नहीं करा जाएगा। पर हमारे लोगों के विश्वास को टाइडिंग और देने में देखा जा सकता है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि भगवान अपने गिरजे को बहुत आशीर्वाद दे रहा है और उसे बढ़ाने का काम हमारे लिए प्रथम है। अब हम अपने भाइयों और बहनों की बातों को सुनेंगे जैसे हम बेहतरीन कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना है कि भगवान उसे कहे कि क्या कहना है और हमारे दिल और दिमाग उसे लबालब भरे। ये मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
Oh,
We will now be pleased to hear from Elder Dallin H. Oaks of the Quorum of the Twelve Apostles.
अब हम एल्डर डैलन एच ऑक्स जो कोरम ऑफ द 12 अपोस्टलों के हैं उनके उन्हें उनसे सुनेंगे उनके बाद हम एल्डर रिचर्ड एच विंकल और पॉल बी पाइपर जो 70 के हैं उन्हें सुनेंगे उनके बाद क्वायर और सभा फिर गाएंगे रिडीमर ऑफ इजराइल गाने के बाद अंत में एल्डर डेविड एस बैक्सटर 70 के बोलेंगे उसके बाद हम एल्डर रॉबर्ट सी ऑक्स जो 70 की प्रेजेंसी से है उसे सुनेंगे उनके बाद एल्डर एम रसल बैलर जो कोरम ऑफ द 12 अपोस्टलों के हैं वो बोलेंगे क्वायर फिर गाएंगे लव एट होम एल्डर ऑक्स
मसीह ने कहा मेरे पास आओ जो काम करते हैं और थके हुए हैं और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा कई भारी बोझ को उठाते हैं किसी ने प्यारों को मृत्यु को खोया है कुछ को डिवोर्स के घाव हुआ है दूसरों को आनंद शक्ति की चाह है कुछ शराब तंबाकू और अश्लीलता के पकात में आ जाते हैं दूसरों को शारीरिक और मानसिक कठिनाई होती है कुछ को सेम जेंडर की अट्रैक्शन की समस्या है किसी को डिप्रेशन होते हैं
Some have terrible feelings of depression or inadequacy.
किसी भी प्रकार से कई के ऊपर बहुत बोझ है हम सबको मसीह ने ये प्यार भरी निमंत्रण दिया है Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I'll give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek, lowly in heart, ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Scripture में कई मिसाल है मसीह के बोझों को कम करने के वे अंधों को देखने देता है भैरों को सुनाई लूड़े लंगड़े को ठीक करते हैं और खराब आत्माओं को निकालते हैं हम कई बार पढ़ते हैं कि इंसान शारीरिक बीमारी से ठीक हो जाता है फिर पूरी तरह से यीशु ने कई की शारीरिक बीमारी को ठीक किया है पर उन्होंने दूसरी कठिनाई को भी ठीक किया है मैथ्यू ने लिखा है कि भगवान हर बीमारी को ठीक करते हैं कई उनके पीछे गए हैं और भगवान ने सबको ठीक किया है शारीरिक मानसिक और आत्मिक बीमारी को ठीक किया है उन्होंने सबको ठीक किया है सिनेगोग के सेमन में यीशु ने ईसाया के भविष्यवाणी को पढ़ा He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the broken heart, to preach the deliverance to the captives and recovering of the sight to the blind, and to set at liberty them that are bruised. जैसे यीशु ने कहा है कि वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आया है उसी कहा है कि वो शारीरिक बीमारी को ठीक करेगा और बंधे हुए को स्वतंत्र करेगा और टूटे दिलों वालों को ठीक करेगा लूक के गॉस्पल में उसके मिनिस्ट्री के कई उदाहरण हैं वे उन समों के बारे में कहता है
of their infirmities.
दूसरे समय पर यह लिखा गया है कि यीशु ने cured many of their infirmities and he healed them that had need of healing. वो उन लोगों के बारे में भी बताता है जुडिया जेरूशलम सेडान से आया ताकि वो यीशु को सुन सके उसके ठीक हो सके जब मसीह ने दुनिया में लोगों के सामने प्रकट हुआ तो उन्होंने लोगों को आगे आने को कहा जो अंधे थे और उनके कोई और बीमारी थी उन्हें वो निमंत्रण उन्होंने दिया किसी प्रकार से बीमारी थे उनको ये कहा उन्होंने कहा मैं चंगाई दूंगा बुक ऑफ मोमन में कहती है ये कि किसी लोगों को सभी लोगों को लाया जो दुखी थे उसमें सारे व्यक्ति होंगे जिन्होंने आज शारीरिक मानसिक आत्मिक दुख है और स्क्रिप्चर बयान देते हैं कि यीशु ने सबको ठीक किया मसीह सिखाता है कि दुनिया में मुश्किल आएगा, पर हमें अच्छी मिजाज का होना है, क्योंकि उन्होंने दुनिया पर विजय पाई है। उनका बलिदान सिर्फ पाप को ही नहीं चुकता है, वो जीवन के हर एक दर्द को मिटाता है। बुक ऑफ मोमन के प्रॉफिट एलमन ने सिखलाया है, वो जाएगा, पीड़ा और दुख और हर तरह की तकलीफ सहेगा। ये सब इसलिए होगी कि वाणी पूरी हो कि वो सभी तरह की पीड़ा और बीमारी सहे और अपने लोगों के लिए। वो हमारे दुख को जानता है और वो हमारे लिए है। अच्छी समर्थन की तरह वो रास्ते में लोगों के घाव को ठीक करता है। भाइयों और बहनों, उनके बलिदान की शक्ति हम सब के लिए है। उनके घाव भरने की शक्ति को हमारी हिम में कहा गया है। मालिक तूफान आ रहा है, मालिक दिल के दर से मैं झुकता हूँ, मेरे उदास दिल में दुखी है, मैं कहता हूँ उठा और प्रार्थना करो, पाप के लहरों में डूबती आत्मा की ऊपर जा रही है। ओ, मैं डूब रहा हूँ, जल्दी से मदद करो। हमारे घाव के मलकेजिक प्रिस्टूट से मदद मिल सकती है। यीशु ने अपने 12 चेलों को शक्ति दी है ताकि वो सही तरह से बीमारियों को ठीक कर सके, और फिर वो गए सुसमाचार की प्रचार और चंगाई देने। 70 को भी भेजा गया जो शक्ति और निर्देशन थे ताकि वो बीमारी के ठीक करे। मसीह सबको ठीक सब कर सकता है, तब उसके प्रिस्टूट की शक्ति वाले नहीं। इस जीवन में प्रिस्टूट की शक्ति कितना है, वही भगवान के उपहार है। हमसे कहा जाता है कि कुछ लोग जिन्हें एल्डरों द्वारा आशीर्वाद दिया वो ठीक नहीं होते, क्योंकि उनके मृत्यु आती है। उसके प्रकार अपोस्टल पॉल ने कोशिश की थी ठीक होने की, भगवान ने उसके ठीक करने से मना किया। पॉल ने बाद में लिखा कि भगवान ने समझाया, मेरे आशीष तुम्हारे लिए काफी है, मेरे शक्ति तुम पर मजबूत हो जाएगी। पॉल ने आज्ञा से जवाब दिया कि वो मैं तकलीफ में खुशियां इसलिए क्रिस्ट की शक्ति मेरे साथ है, जब मेरे कमजोरी तब मेरी मजबूत हो जाती है। बीमारी से ठीक करने से आशीर्वाद कई तरह से आते हैं, हर व्यक्ति की जरूरत के अनुसार, जिसे भगवान सबसे अच्छा जानता है। कई और आशीष अच्छाई चंगाई और बोझ कम कर देती है, पर कई बार हम ठीक हो जाते हैं क्योंकि हमें बोझ को उठाने के लिए शक्ति या धीरज मिलती है। जो लोग एल्मा के पीछे गए थे वो खराब मालिकों के बंधन में थे। जब उन्होंने सहायता के लिए प्रार्थना की, भगवान ने कहा कि वे अच्छे बचाएंगे और वादा किया कि वो तकलीफ कम करेंगे जो उनके, और ये मैं करूँगा कि प्रभु अपने लोगों के दुख में भी उनके मिटा साथ है। उस समय भगवान ने उनको बोझ कम कर दिया, वो बोझ को उठा सके बिना कोई तकलीफ के, और वे प्रभु के आशीष को खुशहाली और धीरज से लिए। ये वादा उन माओ के लिए है जो विधा या डिवोर्स्ड है, जिनके शादी नहीं हुई है, तुम अकेले हो, ये तुम्हारे को भी बोझ है। मेरे पास आओ, प्रॉफिट ने कहा, और स्वस्थ हो जाओ। कई बार हम दुखी होते हैं जब बोझ बहुत ज्यादा होते हैं, जब हमारे जीवन में तूफान आती है, तब हम उन चेलों की तरह चिल्लाते हैं, मालिक हमारे तुम्हें नहीं किया है। इस समय मैं हमें भगवान की जवाब को याद रखना चाहिए, क्या खातिर हो रहा है, क्या तुम्हारे पास विश्वास नहीं है। यीशु मसीह के ठीक करने की शक्ति चाहिए वो बोझों के कम करने या उनके साथ रहने की हो। अपोस्टल पॉल की तरह वो सबको दुखों के लिए है। जब मैंने अश्लीलता के बारे में कॉन्फ्रेंस में बात की तब मैंने कई लोग से खत पाई जो से लैटिन में थे। कुछ को उन लोगों के जिन्होंने अश्लीलता के ऊपर विजय पा ली है, एक आदमी ने लिखा, पाप के आधार से निकल कर मैंने कई पाप समझी है जिसके द्वारा लोगों फंस जाते हैं। इस पर विजय पाना बहुत मुश्किल है। पश्चाताप और सच्चाई में सबसे मजबूती शक्ति मसीह से है, जिनके स्क्रिप्चरों के पढ़ाई लगातार टेंपल जाना और सैक्रमेंटों में गहराई से सोचना, ये सब पश्चाताप के भाग है। इन गतिविधियों से मसीह से साथ संबंध गहरा होता है और उनके बलिदान के समझ और उनके ठीक करने के शक्ति में विश्वास बढ़ाता है। मेरे पास आओ, मसीह ने कहा, और तुम्हारे आत्मा को विश्राम मिलेगा। बहुत से आदमी ने वैसा किया और हम सब वैसा कर रहे हैं। एक औरत जिसके शादी खतरे में थी क्योंकि उसके 5 साल तक अपने पति की अश्लीलता की आदत हो गई, उसने कहा, मसीह के बलिदान से मैंने जो रिपेंट की बारे में सीखा उसकी वजह से मेरे पति आज लत से मुक्त हो गए और मैं भी। वो लिखनी ये इसलिए ताकि जिसे वो प्यार करती है उसके पाप से मुक्त हो जाए। भगवान से बात करो, वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। वो तुम्हारे दर्द को जानता है क्योंकि उन्होंने उसे पहले से ही महसूस किया है। वो भेजा, वो उठाने के लिए तैयार है। विश्वास का भोज वो जाएगा, फिर दर्द को उनकी शांति से बदला जाएगा तुम्हारी आत्मा के गहराओं में। एक आदमी ने एक जनरल अथॉरिटी को बलिदान की शक्ति से सेम जेंडर अट्रैक्शन के दिक्कत पर विजय पाई। गिरजे से निकल देने के बाद जो टेंपल के नियमों के टूटने के पर जिम्मेदारी को बुलाने से हुआ, उसे निर्णय करने था कि वह गॉस्पल की अनुसार जिएगा या उसकी शिक्षा के विपरीत जाएगा। कि वह जानता था कि वह मुश्किल होगा, पर यह नहीं कि वो इतना ज्यादा मुश्किल होगा। उन्होंने खत में बताया कि उनकी आत्मा में किसी दर्द और अकेलापन था। उन्होंने घंटों माफी के लिए प्रार्थना की। उन्होंने स्क्रिप्टों के पढ़ा से प्यार बिशप के साथ और प्रेस्टूट के आशीर्वाद से मदद मिली, पर सभी बड़ी मदद मसीह से मिली जो सबको अपने पास बुलाता है, उन्हें समझाया। सिर्फ उनके बलिदान के द्वारा मैं अब एक बहुत बड़ा आभार महसूस करता हूँ। मेरे दर्द बहुत ज्यादा है, पर जिनके भगवान ने झेला उसके सामने बहुत छोटे थे। जहाँ मेरे जीवन में अंधकार था वहाँ आज प्यार और आभार है। कई कहते हैं कि परिवर्तन मुमकिन है और थेरेपी अकेला रास्ता है। कई बड़े बड़े लिखे लोग जानते हैं इस विषय को, पर वो स्वर्ग पिता को उसमें लाना भूल जाते हैं। अगर बदलाना लाना हो तो भगवान की इच्छा अनुसार करो। मैं चिंता करता हूं कि कई लोग इसके कारणों को ढूंढते हैं। मुझे ये क्यों है उसका कारण समझने के कोई जरूरत नहीं। मुझे पता नहीं है कि मैं इस पैदा हुआ हूँ ये वातावरण में ऐसे क्यों। सच ये है कि ये मेरे जीवन में मुश्किल है और ये आई मैं क्या करूँ वो महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने ये खत लिखा वो यीशु मसीह के बलिदान से पश्चाताप कैसे आती है को जाना। बलिदान ने हमें शक्ति देता है ताकि हम अपने दर्दों और तकलीफों को झेल सके। क्योंकि मसीह ने अपने लोगों को दर्द अपने ऊपर लिया है। भाइयों और बहनों, अगर तुम्हारे विश्वास और प्रार्थना और प्रिस्टूट की शक्ति तुम्हारे दुख दर्द से नहीं बचाती, तब मसीह का बलिदान तुम्हें शक्ति देगा। मेरे पास आओ जो काम करते हैं और दुख में हैं, मसीह ने कहा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जैसे हम इस जीवन के मुसीबतों को समझ करते हैं, मैं हम सब के लिए प्रार्थना करता हूं, जैसे प्रॉफिट मोमन ने अपने बेटे से प्रार्थना की है, क्राइस्ट तुम्हारे उठाएगा और उन्हें दर्द और मृत्यु और माफी और अनंत जीवन की आशा तुम्हारे विचार में हमेशा रहे। मैं बयान देता हूं ये यीशु मसीह का, हम उनके पास अपने के लिए निमंत्रण देते हैं। वो हमारे घाव को ठीक करेगा और भोज से चंगाई देगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
As President Hinckley just mentioned, the 123rd temple of the Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints के 123वें टेंपल का हाल में ही प्रेसिडेंट गॉर्डन पी हिंकली ने उद्घाटन किया सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में। वो सुंदर टेंपल 80,000 उत्साहित सदस्यों की सेवा करेगा सैक्रामेंटो और आसपास के इलाकों में। 168,000 से ज्यादा लोग ओपन हाउस के समय टेंपल दिखाने आए। उनसे कहा गया कि सदस्यों ने इन इमारतों में यीशु मसीह से किसी भी और जगह से ज्यादा नजदीक हो सकते हैं। हमारे सदस्य जानते थे कि मसीह के द्वारा हम शांति पा सकते हैं और आज की कठिनाइयों की दुनिया में अपने परिवार और अपने आप को बचा सकते हैं। जब तुम टेंपल जाते हो, तुम अपने परिवार को पहले से ज्यादा प्यार करते हो। टेंपल परिवारों के बारे में ही है। मेरी बीवी कैरन और मैंने हमारे टेंपल की सेवा को बढ़ा दिया है और उससे हमारा और हमारे बच्चों का प्यार बढ़ा है और वो वहां नहीं रुकता है। वो माँ बाप, भाइयों बहनों, चाचा चाचियों, कजनों, पूर्वजों, पोते पोतियों के लिए है। ये इलाइजा की आत्मा है जो परिवार के इतिहास के काम की आत्मा है और जो पवित्र आत्मा बाप के दिलों में बच्चों की ओर और बच्चों की बाप की ओर ले जाती है, क्योंकि ये प्रीस्टहुड पति और पत्नियों को साथ में सील करता है, बच्चों को माँ बाप के साथ अनंतता तक सील करता है, ताकि परिवार अनंत हो, उसे मृत्यु तोड़ नहीं पाए। मैंने और मेरी पत्नी ने हमारे बच्चों को छोटी उम्र में आर्टिकल्स ऑफ फेथ याद करने की कोशिश कराई। उसका इनाम था पिता के साथ एक गतिविधि। हम खुश थे कि हमारे तीन बड़े बच्चों ने चुनौती को पूरा किया। जब हमारे 7 साल के बबच्चे ने 13 आर्टिकल्स ऑफ फेथ को रट लिया, हमने एक रात गतिविधि करने के लिए रखी। मैं काम से इतना व्यस्त था, गिरजे की जिम्मेदारियों से, कि अपने बेटे को 2 हफ्ते तक वो समय नहीं दे पाया। उसे वो अच्छा नहीं लगा। मैंने जाना कि हमारा शहर में रात भर चलने वाली एक बॉलिंग एली थी। मैंने एक दिन को चुना जब तक हम सुबह 5 बजे वहां जा सके। हमारा प्लान था कि सुबह 4 बजे उठेंगे, नाश्ता कर फिर जाएंगे। जब वो दिन आया, मैंने अपने कंधे पर किसी का हाथ को महसूस किया। जैसे मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, मेरे बेटे ने कहा, क्या अब वो जाने का वक्त है पिताजी? मैंने अपनी घड़ी पर देखा तो सिर्फ रात के 2 बजे थे। मैंने कहा, जाओ सो जाओ, अभी वो समय नहीं है। 1 घंटे बाद वही हुआ, पिताजी क्या जाने का समय है? दूसरी बार उसको बिस्तर भेजने के बाद मैं भी उसके उस उत्साह को महसूस करने लगा। 4 बजे ہم نے اٹھ کر کھایا, پھر بولنگ گئے. ہم نے بہت آنند اٹھایا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس طرح کی یادگار گتیویدھیاں میرے سبھی بچوں کے ساتھ کری ہوتی, پر ایسا نہیں ہوا. میں اس طرح کا باپ ہوں جو چاہتا ہے کہ وہ سمے میں واپس جا کر اور الگ کام کرے. تمہاری طرح میں بھی بچوں کو کھونا نہیں چاہتا ہوں. میں اپنے پریوار کے ساتھ انتتا کے لیے ہونا چاہتا ہوں, اور ٹیمپل ہمارے سمبندھوں کو جیون کے بات جاری رکھنے کی آشا دیتے ہیں, ٹیمپل کی سیلنگ کی شکتی اور آشیرواد دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی لوگ ادھر ادھر ہو جائیں, پر بھگوان کے ساتھ جلد ہی انہیں واپس بھگوان کے ہاتھ جلد ہی انہیں واپس لے آئیں گے. اس جیون یا اگلی جیون میں وہ لوگ واپس آئیں گے. انہیں اپنے پاپوں کی قیمت چکانی ہی ہوگی. وہ راستہ آسان نہیں ہوگا, مگر یہ ساری مشکلیں ویرت نہیں جائیں گی اگر وہ راستہ ہمیں واپس عیسیٰ مسیح کے پاس لے جاتا ہے.
Temple
اس دنیا سے بچنے کی جگہ ہے. سیکرمنٹو کے سدسیوں نے اوپن ہاؤس کے لوگوں سے کہا کہ کئی بار ہمارے دماغ مشکلوں سے بھر جاتے ہیں اور کتنی ساری چیزیں ہمارا دھیان مانگتی ہیں کہ ہم ٹھیک سے نہیں سوچ سکتے. ٹیمپل میں اسمنجن کی دھول اٹھ جاتی ہے, اور پھر اس ڈھنگ سے دیکھ پاتے ہیں جیسے پہلے کبھی نہیں. ٹیمپل کا سورگیہ روم شانتی اور سندرتا کے لیے ایک خاص جگہ ہے. وہ ایک جگہ ہے جہاں ہم سورگیہ پتا اور ان کے بیٹے کا پیار محسوس کر پرارتھنا اور دھیان کر سکتے ہیں. جیسے ہم ٹیمپل میں دھیان کرتے ہیں, ہمارا خیال پریوار کے سدسیوں کی اور جاتا ہے. دو سیمیل میں ڈیوڈ نے کہا ہے, ٹیمپل خود کی ریولیشن کو پا کر اپنے کاموں میں آشیرواد پانے کی جگہ ہے.
Ponder, pray, and meditate, and feel the love of Heavenly Father and the Savior. As we ponder and meditate in the temple, our thoughts naturally focus on members of our family. In 2 Samuel chapter 22, verse 7, we read the words of David.
President Hinckley ne hame kaha hai ki jis prakar hamara Isa Masih ne sabke liye apne jeevan ko balidan diya, ہم اسی طرح سے پر چھوٹے روپ میں ان کے مسیحا بنتے ہیں جن کے لیے ہم ٹیمپل کا کام کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس پرگتی کے لیے ہماری مدد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ ایک بڑی ہی مہتوپورن سیوا ہے. جس سے ہمارا مرت بھائی اور بہن سچ میں ایک پریوار بنتے ہیں.
This is such meaningful service we give because our departed brothers and sisters more literally become connected to us.
ٹیمپل پتا اور ان کے بیٹے کو جاننے کی جگہ ہے. وہاں ہم دیویا اپستھتی کو انوبھو کرتے ہیں. پروفیٹ جوزف سمتھ نے کہا, میں تمہیں آگیا دیتا ہوں کہ تم بھگوان کے رہسے کو اور ڈھونڈو. وہ ایک نیم ہے. ہم کہاں ڈھونڈیں؟ بھگوان کے گھر میں ہی. ہم ٹیمپل جانے اور ٹیمپل کو پیار کرنے والے لوگ بننا چاہتے ہیں. میں بیان دیتا ہوں کہ ٹیمپل پریواروں کو اور کے بارے میں ہی ہے. میں بیان دیتا ہوں کہ ٹیمپل میں سب کچھ عیسیٰ مسیح کا بیان دیتا ہے. ان کے پیار اور سیوا کو وہاں محسوس کیا جا سکتا ہے. टेम्पल उनका परिवार घर है। मैं जानता हूं कि वो भगवान के बेटे हैं, हमें बचाने वाले हैं और पिता के सामने हमारे वकील। वो हमसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हमारे परिवार हमेशा के लिए खुशी के साथ रहे। वो चाहते हैं कि हम सब टेम्पल जाएं। ईसा मसीह के नाम, आमेन।
कुछ दिन पहले एक पारिवारिक खाने के चालकों के बारे में बात कर रहे थे। हमारी 13 साल की बेटी क्लारिसा एक सैक्रमेंट ट्रक पर काम कर रही थी और उस डर लग रहा था। मैंने उसे कहा कि सब ठीक होगा और उसके डर को कम करने के लिए कहा कि वो कम से कम जनरल कॉन्फ्रेंस में हजारों लोगों के सामने तो बोल नहीं रहे हैं। क्लारिसा ने भरोसा दिलाया, वो ठीक होगा पापा, सिर्फ सोचो कि वो एक बड़ी ब्रांच है। भाइयों और बहनों, हम वाकई में एक बड़ी ब्रांच है। मैं आज गिरजे के पहली पीढ़ी के सदस्यों से बोलूंगा। तुम अपने परिवार में पहले हो जिसने यीशु मसीह के विस्थापित गॉस्पल के संदेश को अपनाया है, उसके प्रॉफिट सीयर और रेवलेटर्स के साथ। तुम यीशु मसीह में विश्वास कर पापों के पश्चाताप कर उनका नाम बपतिस्मा से अपने पर लिया है और पवित्र आत्मा के उपहार को पाया है। अपने परिवार के पहले गॉस्पल को मन के तुम पहली पीढ़ी बने हैं, एक चुनी पीढ़ी जिसे पहले और आने की पीढ़ियों को आशीर्वाद मिलेगा। जैसे तुम गॉस्पल को जीते हो, तुम अपने परिवार और दोस्तों पर अच्छा प्रभाव डालोगे। तुम्हारा अच्छा जीवन एक विश्वास की नींव बनाएगा जो आने वाली पीढ़ियों को आशीर्वाद देंगी। You may have few or no friends or relatives to understand and support you. At times, you may become discouraged. तुम्हारे प्रभाव को महसूस करेगा जैसे तुम उनके लिए पवित्र ओर्डिनेंस करोगे। पहली पीढ़ी को रूप में जरूरी सीधी हो। पहली पीढ़ी के सदस्य होना आसान नहीं है। तुम वो करोगे जो तुम्हारे परिवार में से किसी ने नहीं किया है। तुम्हारे परिवार से कोई भी सदस्य नहीं हो सकता है, बहुत कम दोस्त है संबंधी तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हें अकेले हो सकते हो, एक लायक सदस्य को पाने में मुश्किल पा सकते हो, जैसे शादी कर सको।
Great strength to the church when you use your testimony, talents, abilities, and energy to build the kingdom in your wards and branches. You are great examples of sharing the gospel, serving missions.
कई बार तुम सोचते हो कि तुम जिन आशीर्वादों को चाहते हो कभी भी नहीं मिलेंगे। तुम चीजें तुम्हारे पुराने जीवन की ओर खींचेंगे।
So much of what is done in the church today could not be done without your efforts.
क्या तुम पक्के बने रहोगे? तुम्हें क्या करना है?
You are an example to your family of a true disciple of Jesus Christ.
मैं पहली पीढ़ी का सदस्य नहीं हूँ, पर मैं यहाँ हूँ पहली पीढ़ी के सदस्यों के विदाज।
They will know that you are engaged in something good, even if they do not understand it or have enough faith to accept it. Be patient and kind. Pray each day to know how you can serve them, and the Lord will help you and bless you to influence your family to good.
पहले ये जवानों के जीवन पहले पीढ़ी के लिए आसान नहीं होगा, पर वादे के लिए गए आशीर्वाद भगवान के समय में आएगा। कई चीज तुम्हारी पकड़ के बाहर है। अगर तुम ध्यान नहीं दो, तुम जो नहीं है उसमें फंस जाओगे।
As the first generation, you are also the key to open the Lord's blessings to family members that died without hearing the gospel and receiving saving ordinances. Yours is the unique opportunity and privilege to begin this work on their behalf.
दूसरे गॉस्पल दोस्त ओर्डिनेंस के आंसरों रहो ओ ओर्डिनेंस हम भगवान और पिछले और आने वाली पीढ़ी से जोड़ता है ओ हमें आत्मिक शक्ति और रक्षा देते हैं
Because you are a first generation member, each choice you make is important. Seemingly small and insignificant decisions will impact past and future generations as well as your own life.
आत्मिक शक्ति और
His friends were all there and were drinking. There was considerable pressure. No one but him knew
ordinance that. के अंदर ही आत्मिक मतलब होता है. आत्मिक मतलब ordinance के कहा गया है और जरूरत से ज्यादा जरूरी है. वो हम सबसे किया वो है जिस पर जब टिका है.
And I can truly say that I have kept the word of wisdom. I believe if I had accepted that drink, I would perhaps never have been able to keep the word of wisdom. But Chris kept his baptismal promises. Later he met and married a faithful member.
Together they raised ordinance के अधरूनी आत्मिक मतलब होता है. आत्मिक मतलब ordinance के नियमों में पाया जाता है. हम एक ordinance को पाते हैं. नियमों को अपना कर सिर्फ भारी रूप के काम करते हैं.
Can you see now why the first generation?
क्या आप यह देख सकते हैं पहला जेनरेशन कितने अच्छी है? मैं आपको कृपया करते हैं कि आप Never underestimate करें कि आपके क्या शक्ति है. शैतान जानते हैं कि वो तुम कौन हो. वो कुछ भी करेगा. कुछ समय हम सब गलत करते हैं, लेकिन हमारे प्यारे परमेश्वर हमारे हमेशा हमारे साथ है, जो हमारे साथ देंगे. कभी भी डिस्करेज ना हो. रिपेंटेंस के साथ पेशेंट रहो और आगे बढ़ते रहो. चर्च में हम पायनियर के बारे में बहुत ही बातें करते हैं. वो पहले जेनरेशन मेंबर्स थे तुम्हारे जैसे. वो भी परिवार के दिक्कती पाई है. वो भी एक छोटी सी लाइफ जब वो गिरे तो उठकर खड़े होकर आगे बढ़ते रहे. और जब हम उनको देखते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और उनके लेगेसी हमारे बन सकते हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन के मेंबर के तरह. फेथफुल रहो, अपने परिवार को बलिदान दो. तुम ही पहला जेनरेशन है, ए चोजन जेनरेशन, जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जेनरेशन. हम आपको मानते हैं. भगवान आपको आशीर्वाद देंगे. मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन.
This is the 176th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
39 years ago, two of the Lord's missionaries knocked on my door. 39
वर्ष पहले ईश्वर के दो परिचारकों ने मेरे पिता के दरवाजों को खटखटाया ग्लासगो इंग्लैंड स्कॉटलैंड में. हम बहुत प्रभावित हुए उनकी चमक, उनकी विनम्रता और उनके विश्वास द्वारा. जब भी वो हमारे घर पर, हमें प्यार और शांति महसूस हुई. वो पूरी अच्छाई की भावना थी. उनका शिक्षण व्यक्तिगत सच्चा और सुपरिचित था. हमें वो सच्चा लगा. कुछ सप्ताह बाद हमारा बैप्टिज्म और पुष्टि हुई. सदस्य और नेताओं द्वारा हमें मैत्रता और उदारता में बांध लिया गया हमारे इस नए गिरजाघर परिवार में. इस तरह शुरू हुई सुसमाचार यात्रा, जिससे हमारे जीवन की वृद्धि मिली और आशीर्वाद मिले, जिससे गहरा, टिकाऊ, शांत उद्देश्य और निर्देशन मिला. उस आशा में कि वो मदद पहुंचने उन गिरजाघर सदस्यों के लिए, मैं आज बताऊंगा सिर्फ 3 सुसमाचार सिद्धांतों को जिन्हें यात्रा के समय सीखा गया. प्रथम, प्रेरणा भरी बदलती हुई विश्वास की शक्ति यीशु मसीह में. इस तरह का विश्वास आध्यात्मिक ऑक्सीजन की तरह है. जब हम मौका देते हैं विश्वास को कि वो स्वतंत्र से हम में रह सके, वो हमारी आध्यात्मिकता इंद्रियों को जगाता है और सजीव करता है. वो जान देता है हमारी आत्माओं को. विश्वास आशा दिलाता है. हमारे विचार बदलते हैं. हमारी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है. हम जीवन और दूसरों में अच्छाई ढूंढते हैं. हम जीवन के उद्देश्य, अर्थ का गहरा रूप प्राप्त करते हैं. निराशा आनंद का मार्ग देती है. इस तरह का विश्वास एक स्वर्गीय तोहफा है, पर इसे ढूंढना और विकास किया जा सकता है, जिससे हमारा धर्मशास्त्र शब्दकोश सुझाव देता है. कई बार विश्वास उत्तेजित होता है उनकी गवाही सुनकर जिनके पास विश्वास होता है. फिर विश्वास का लालन पालन होता है जब हम अपने आप को मौका देते हैं विश्वास करने के लिए. सभी अन्य नैतिकताओं की तरह विश्वास मजबूत होता है जब हम उसका अभ्यास करते हैं. विश्वास न्यायप्रिय इच्छा, विश्वास और आज्ञाकारी का उत्पादन है. मॉर्मन की पुस्तक में उदाहरण दिखलाया गया है राजा लमनाय के पिता, जिन्होंने एरन की गवाही को सुना और अपनी इच्छा से विश्वास और कार्य करने चाहता था. इसलिए उन्होंने विनम्र प्रार्थना में कहा, अगर ईश्वर है, अगर आप ईश्वर हैं, तुम अपना परिचय मुझे दोगे और मैं अपने सभी पापों को त्याग दूंगा तुम्हें जानने के लिए. इसी तरह वो हमारे लिए भी हो सकता है. जब हम मौका दें अपने आप को गवाही की पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होने के लिए, जब हम विश्वास का अभ्यास करेंगे, जब हम इच्छा, सोच विचार, हम अपने विश्वास का विकास करें. दूसरा, जब हम सेवा करते हैं, हम प्रगति करते हैं. निस्वार्थ सेवा एक बढ़िया दावा है जो बढ़िया दवा है जो बीमारियों के लिए दुनिया भर के इंसान की महामारी है. कुछ लोग चिंतित हो जाते हैं जब लगता है कि पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया उनके लिए. जब उनके जीवन भरपूर रहेंगे अगर सिर्फ वो अधिक ध्यान दें दूसरों की जरूरतों के लिए. समाधान है जब हम अपने पास के लोगों की महसूस समस्याओं का समाधान निकालेंगे कि अपनी समस्याओं की चिंता की जाए. जवाब है जब उठाना, जब खुद बोझ से दबे हो. समाधान है सम्मिलित होना, ना कि शिकायत की जाए कि हमें इनाम नहीं मिल रहा. अपनी आत्मा को सेवा में लगाने से मदद मिलती है अपनी परवाह, चिंताओं और चुनौतियों से ऊपर उठने में. जब हम अपनी शक्तियों दूसरों के बोझ उठाने में लगाते हैं, कुछ चमत्कार होता है. हमारे अपने बोझ गायब हो जाते हैं. हम खुश होते हैं. हमारा जीवन में अधिक वास्तु होती है. तीसरा, अनुनायी होने हमसे वादा नहीं करता है जिनकी कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी. जब हम अपनी राह की यात्रा कर रहे सावधानी और वफादारी से सीधे और पतले मार्ग से हम बाधा और चुनौती का सामना करेंगे. दिन, शायद महीने, कई वर्ष भी, जब जीवन कठिन रहेगा, हम अनुभव करते हैं अपने حصے کی کٹھنائی دل کی پیڑا، اکیلے پن پیڑا اور دکھ سے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ہمارے حصے سے ادھک ہے۔ کیا کریں جب وپتی آتی ہے؟ صرف ایک چیز کرنی ہے، استھرتا سے کھڑے رہیے اور انت تک سہتا کریے۔ جیون کی چنوتیوں میں اصلی دکھ تب آتا ہے صرف جب ہم انہیں موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے سچے مارگ سے دور کریں۔ سمسیاؤں اور چنوتی کے سمے جب کچھ لوگ وشواس تیاگ دیتے ہیں، اسی سمے جب اپنے پاس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پرارتھنا کی اپیکشا کی جاتی ہے، اسی سمے جب باندھنا چاہیے۔ نیتکتا لاپرواہی سے دور دی جاتی ہے جب اسے پریم کرنا چاہیے۔ ایشور کو بلایا جاتا ہے صرف اس ڈر سے کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ سچائی یہ ہے کہ ہماری ہی رکشا، ہماری ہی سرکشا، ہماری ہی آشا ہے۔ اسے پکڑنے رہنے جو سچا ہے۔ جب اندھکار ہمارے پاس آتا ہے ہم کھو جاتے ہیں۔ اگر ہم لوہے کی چھڑی کو جانے دیں جو ایشور کا شبد ہے۔ ورشا ہوئی، ہوا چلی، باڑھ چڑھی، پھر بھی وہ بچ گیا کیونکہ اس نے پکی نیو پر بنایا اور نرنائک روپ سے وہ وہاں رہا جب طوفان آیا۔ ایک تیرتھ یاتری کے ورنن میں انونائی کی پرگتی میں بنیان کو لکھا۔ کون سچی بہادری دیکھے گا؟ اسے یہاں آنے دیجئے۔ ایک یہاں ستھر رہے گا، ہوا آئے، موسم آئے، کوئی نراشا نہیں۔ ایک بار بھاونا کومل کرے، اس کا پرتھم سویکار کیا ہوا ادیشیہ ایک تیرتھ یاتری ہونا۔ دیودوت پال نے کلوسیم کو پریرت کیا، ستھر وشواس میں لگے رہے اور سوسماچار کی آشا سے دور ہونا جس سے تم نے سنا۔ کورنت کے لوگوں کے لیے یہ شکتیشالی گواہی۔ ہم سبھی اور سمسیاؤں کے سامنا کر رہے ہیں، پھر بھی دکھی نہیں۔ ہم گھبرائے ہوئے ہیں پر نراشا سے نہیں، اتیاچار کیا گیا پر چھوڑے نہیں گئے، نیچے گرائے گئے پر برباد نہیں ہوئے۔ اس طرح کے درشے کو کس نے سمبھو کیا؟ پال نے کارن بتلایا، ایشور جنہوں نے آدیش دیا کہ اندھکار میں روشنی ہو، وہ ہمارے دلوں میں چمکتا ایشور کی مہیما کے گیان کی روشنی میں یسوع مسیح کے چہرے پر۔ یہ میری گواہی ہے جسے ہم اپنے وشواس کا لالن پالن کرے، سیوا دوارا پرگتی کرے اور ستھر اور سچا چاہے جو بھی ہو کی پیار کا محسوس کریں گے۔ ہم اپنے آپ کو جگہ رکھیں، ہم پرائشچت کا آشیرواد کی چودھائی اور گہری تک سدسیا میں بدلتی ہے۔ اس گواہی میں عیسی مسیح کے نام، ایمین۔
How thankful I am for Latter-day Scriptures regarding the word of Christians.
نیو کے کوشچن اصولوں کے لیے میں ابھاوی دنوں کے اسکرپچروں کے آخری دنوں کے اسکرپچروں کے لیے ابھاوی ہوں۔ بک آف مومن دھیرے اور چیریٹی کے سمبندھ کو سمجھتا ہے۔ مومن نے کہا کہ اگر ایک آدمی ادار نہیں تب وہ کچھ بھی نہیں، اس لیے اسے ادھار بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر چیریٹی کے 13 روپ بتائے، یعنی مسیح کے کا سے شدھ پیار۔ یہ دلچسپی کی بات ہے کہ 13 میں سے چار دھیرے سے جڑے ہیں۔ پہلے ادارتا کا پربھاؤ لمبا ہے، دھیریہ کا یہی مطلب ہے، آسانی سے کودت نہیں ہوتا۔ یہ دھیریہ کا ایک اور گن ہے، اور گن ہے جیسے سبھی کشٹوں کو سہتا ہے اور آخر میں چیریٹی سبھی باتوں کو میں سہنشیل بنا رہتا ہے۔ اور دھیریہ کا यह धैर्य का ही रूप है। इनसे ये पता पड़ता है कि अगर हमारे दिल में धैर्य की चमक न हो तो हम मसीह जैसे गुण पाने से बहुत दूर रहेंगे। बाइबल में जोब ने धैर्य की मिसाल दी। अपने राज्य और बच्चों को खोने के बाद जोब ने पक्की विश्वास से कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। अब सब बातों में भी जोब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता का दोष लगाया। हम इतनी बार सताए गए लोगों से सुनते हैं, भगवान ये मेरे साथ क्यों करा है। सब वास्तव में उसे शक्ति से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो सब कुछ सह सके। ईसा मसीह के जीवन में धैर्य के सबसे बड़े मिसाल हमें मिलते हैं। उनके धैर्य का सबूत गेत्सेमनी में मिला जब उन्होंने दर्द में कहा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कष्ट कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा आप चाहते हो वैसा हो। उन्होंने वास्तव में सभी चीज़ों का दर्द उठाया। कैलवरी में जब उन्होंने कील गाड़कर क्रूस पर चढ़ाया गया था, मसीह के धैर्य की पूरी मिसाल को जारी रखा और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। धैर्य के इन मिसालों का हम पर और गहरा असर पड़ेगा अगर हम 3 निफाय की इस चेतावनी के बारे में सोचें। इसलिए तुम्हें इस तरह की व्यक्ति बनना चाहिए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरी तरह स्क्रिप्चर भरे हुए हैं धैर्य के महत्व की मिसालों से। उनमें से कुछ बताने दो। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा, फिर भी प्रभु ने अपने लोगों से सुधारा उचित समझा। हाँ, उसने उनकी सहनशीलता और विश्वास की परीक्षा ली। मोजाया में किंग बेंजामिन ने हमसे कहा है कि हम एक नैसर्गिक आदमी भगवान के दुश्मन रहेंगे जब तक हम पवित्र आत्मा के बहाव में अपने धैर्य और उसूलों के द्वारा नहीं आते। जोसेफ स्मिथ ने कहा है, धैर्य स्वर्गीय है। क्या धैर्य हमारे चिंतन और कोशिशों के लायक है? हाँ, अगर हम बिन चैरिटी के लोगों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, अगर हम भगवान से के दुश्मन नैसर्गिक आदमी की तरह काम होना चाहते हैं, हाँ अगर हम स्वर्गीय बनना चाहते हैं, हाँ अगर हम मसीह की तरह बनना चाहते हैं। नैसर्गिक आदमी जो उतावला है हमारे चारों ओर है। हम उसे समाचार में देखते हैं जब क्रोधित होकर माँ बाप बच्चों को मार डालते हैं। हमारी सड़कों पर लोग उतावले या क्रोधित होकर एक्सीडेंट कर देते हैं जो कभी जीव घातक भी होते हैं। साधारण रूप से हम देखते हैं कि लोग गुस्सा होते हैं और चिल्लाते हैं और धीरे आगे बढ़ती लाइनों के लिए या विक्रेताओं के लंबी फोन कॉल पर या बच्चों पर जो सुनते नहीं। क्या तुम्हें यह जाना माना लगता है? नसीब से बड़े धैर्य की कम बनाई लेकिन बेहतरीन कहानियां हैं। हाल ही में मैं जीवन भर के एक दोस्त के फ्यूनरल में गया था। वहां उनके बेटे ने माँ बाप के धैर्य की एक सुंदर कहानी बताई। जब उनका बेटा जवान था, उनके पिता एक मोटरसाइकिल डीलरशिप के मालिक थे। एक दिन उन्हें एक चमचमाती मोटरसाइकिलों का शिपमेंट मिला। बालक ने मोटरसाइकिल पर सवारी की। उसने फिर उसे चालू किया। फिर डर कर वह उस पर से कूद पड़ा, लेकिन मोटरसाइकिल गिर गई। फिर एक के बाद एक सब गिर गई। जब पिता ने शोर को सुना, उसने देखा कि क्या हो रहा था। धीरे से मुस्कुराते हुए उसने कहा, चलो बेटा, हम एक को ठीक कर बेच दें ताकि हम बाकी के लिए पैसा दे सकें। मेरा दोस्त माँ बाप के धैर्य की मिसाल था। धैर्य को एक प्रवेश द्वार की तरह सोचा जा सकता है जो उसके समान गुण जैसे दयालुपन, सहनशीलता या की बढ़ावत में सहायता दे सकता है। जब पीटर ने मसीह से पूछा कि अपने भाई को कितनी बार माफ करे, मसीह ने कहा, 70 × 7। जब पीटर ने 7 बार माफ करने का सुझाव दिया, 70 × 7 माफ करने के लिए बहुत धैर्य की जरूरत है।
Christ replied,
Elder Neil A. Maxwell ने विश्वास और धैर्य को जोड़ा जब उन्होंने सिखाया धैर्य स्वर्गीय पिता में विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। हम जब हम व्यर्थ में उतावले होते हैं हम ये संकेत करते हैं कि हम भगवान से ज्यादा जानते हैं कि क्या अच्छा है, यानी हमारा काम करने का समय भगवान से बढ़िया है। हमारा विश्वास तभी बढ़ेगा जब हम भगवान की इच्छा को हमारे जीवन में होने दें उनके समय अनुसार। अगर उतावलेपन हमें इतना ज़्यादा है हम धैर्य को कैसे बढ़ाएं? नैसर्गिक आदमी का बर्ताव से मसीह की सबसे बढ़िया मिसाल की पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमें यह करना जरूरी है। अगर हम विस्थापित गॉस्पल के आशीर्वादों को पूरी तरह पाना चाहेंगे, अगर हम ये समझ लेंगे तो हमें इच्छा होगी कि हम स्क्रिप्चरों की गाइड में मसीह के धैर्य का हर एक स्क्रिप्चर को पढ़कर चिंतन करेंगे। दूसरा, अपने धैर्य को नाप लो मसीह की तरह और बनने के लिए कितना और धैर्य पाना पड़ेगा। ये जांच करना मुश्किल है। हमें परिवार के किसी सदस्य की सहायता मांग सकते हैं। अपने आसपास धैर्य और उतावलेपन की मिसालों को परखो। हम उन लोगों की प्रतिकृति करना चाहेंगे जिसे हम धैर्यवान समझते हैं। हर दिन धैर्यवान बनने का लक्ष्य फिर बनाओ और परिवार के किसी सदस्य को इस लक्ष्य में लागू रखो। लगता है कि ये बहुत काम है पर किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत जरूरी है। नैसर्गिक आदमी को हरा कर मसीह की तरह बनना एक जरूरी लक्ष्य है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम इस रास्ते पर समर्पण से मेहनत करेंगे। मैं बयान देता हूँ कि ईसा ही मसीह है। वह इस गिरजे का मुख्य है और वह उसके जीवित संदेशता द्वारा निर्देशन देता है, हाँ, ताकि हम मसीह जैसे बने। ये बयान मैं उनके पवित्र नाम में देता हूँ। आमेन।
I was wondering if we were going to have a choir number or something, looking at the time. It's been a wonderful conference this morning.
Acha conference hai. Abhi hal mein maine Mormon ka pustak padha. Mujhe Prophet Jacob ka ek shiksha dhyan mein aaya. तुम्हें याद है कि जैकब लिहे का जो दो में से एक बेटा था जो जंगल में पैदा हुआ था जरूसलम से जाने के बाद हुए चमत्कार का आंखों देखा गवा था और अपने परिवार का बिखरते हुए देखा था जब वे आज्ञाओं से पालन नहीं करे। जैकब लेमन और लेमेउल को जानता और प्यार करता था जैसे निफाई को भी और उनके बीच में जागते झगड़े जैकब को दुख देता था। जैकब के लिए विचार का देवा ज्ञान की चिंता नहीं था परंतु यह परिवार के विषय में था। जैकब का आत्मिक पीड़ा उनके शब्दों में ये जब उन्होंने अपने लोगों के बारे में बदलाया कि वे प्रॉफिट के वाणी को ठुकरा देंगे और क्रिस्ट के विषय में है और प्रभु की शक्ति को भी और पवित्र आत्मा की आशीष और मुक्ति का योजना को हंसी उड़ाएंगे। और फिर जब पीड़ा देने के पहले वे आठ सार शब्दों में बदलाव है जो मेरे आज सुबह का शिक्षा है। जैकब ने कहा, चतुर रहो और अब मैं क्या कहूँ। जो जो पिता या माता या दादा या दादी हैं उनके जरा समझ में आ रहा होगा कि जैकब उस समय क्या महसूस कर रहा है। वह अपने लोगों से प्यार करता क्योंकि वे उन्हें परिवार थे, उनके सरलता से सिखलाता था और अपने पूरी आत्मा के शक्ति के साथ उन्होंने चेतावनी दी साफ साफ कि उन लोगों के साथ क्या होगा अगर वे सही को नहीं अपनाएंगे और कठिन फाटक और पथरी रास्ते से नहीं जाएंगे। और वह कुछ नहीं सोच सकते थे ताकि उनके और चेतावनी और साहस दे पाए। सरलता से उन्होंने तब कहा, चतुर रहो और अब मैं क्या कहूँ। मैं कई देशों में गिरजा के सदस्य के मिल चुका हूँ। मैं खुश हूँ तुम सभी सदस्य की आत्मा और शक्ति को देखकर। दिलों को छुआ जाता है और जीवन में आशीष मिलती है। ये कार्य पूरी बल से बंद रहा है। मैं आभारी हूँ इसके लिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि और भी तरह से सभी सदस्य चतुर हो सकते हैं। प्रभु अपने आनंद बुद्धि से गिरजा में कार्य करने वालों के पैसे की मजदूरी नहीं देता। इसका मतलब है कि हमें आज्ञा दिया गया है कि हम एक दूसरे की सहायता करें। हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए जैसे स्वर्ग पिता और प्रभु यीशु क्रिस्ट करता है। हमारा गिरजा का कॉलिंग्स और हालात बदलते रहते हैं ताकि हमें हर तरह की सहायता लोगों को दे सके और आगे बढ़ सके। गिरजा में कई लीडरों और टीचरों पूरी दिलों जान से अपने अपने जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। कुछ कम जिम्मेदार हैं, ये सच है, लेकिन सभी हमेशा सच्चे सुसमाचार की सहायता देते हैं। कभी कभी कुछ लोग पूरी बलबूते से गिरजा में सेवा करते हैं और उनके जीवन असंतुलन हो जाता है। वे ये भूल जाते हैं कि ये लोग ज्यादा जरूरी है गिरजा के प्रोग्रामों से। वे सहायता और उलझन बना देते हैं और कार्य में भाग लेते हैं जिसमें हमारा वक्त जाहिर हो जाता है, पैसा खर्च होता है और हमारा जरा शक्ति लगता है। वे महीनों घंटे है और लोग भी कार्य में भाग ले ताकि वे भी अपने जिम्मेदारी में बढ़ सके। इस वजह से उन्हें आनंद परिवार का संबंध खराब हो जाता है, नौकरी पर कष्ट आ जाता है। ऐसा हम तंदुरुस्त नहीं रहेंगे आत्मिक या किसी तरह से। लेकिन कई बार हमारे गिरजा का कॉलिंग्स हमें पूरी और ध्यान से करना पड़ता है, तब भी हमें खुद को संतुलन रखना चाहिए। गिरजा के सहायता हमारे जीवन के अनमोल कार्य के बीच में नहीं आना चाहिए। राजा बेंजामिन किसी सुझाव था, देखो कि सभी काम चतुरता और ढंग से करो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एक इंसान इतना जोरों से भागे कि उसके पास शक्ति ना हो। मैं 6 राह बताता हूँ जिससे हम चतुरता और अच्छे से सहायता कर सकते हैं। पहले लोगों और पर ध्यान दो, प्रोग्रामों में नहीं। एक मुख्य कार्य हम करते हैं यीशु क्रिस्ट के सुसमाचार में है कि हम लोगों को बनाएं, सही तरह से लोगों की सहायता करें से हम उनके समझ सकते हैं, उनके रूप को, उनके बल को, उनके दुख, उनके ख्वाहिश और अपने सपने को, ताकि सही मदद और सहायता को हम दे सकें। सच्ची बात यह है कि ये आसान है प्रोग्रामों को चलाना, लेकिन कठिन है लोगों को समझना और सच्चा सेवा करना। गिरजा के सबसे मुख्य लक्ष्य ये है कि सुबह को सब लोगों को हम कैसे सहायता प्रदान कर सकते हैं विषय में बात करें, और बातें अब टेलीफोन्स, ईमेल्स और पत्र के द्वारा किया जा सकता है ताकि मीटिंग्स में हम सिर्फ लोगों पर फोकस कर सकें। हमारा लक्ष्य हमेशा गिरजा के प्रोग्रामों के द्वारा लोगों को उठाना, साहस, सहायता, शिक्षा और प्रेम देना है। याद रखना कि आत्मा की मूल्य अनमोल है परमेश्वर के नज़र में। प्रोग्राम्स औजार है, उनके अपने कार्य बीच में नहीं आना चाहिए ताकि वे और सभी लोगों के जीवन के आशीष और सेवा ना कर सके। दूसरा, विचार देना। हमें अपने कॉलिंग्स को मैग्निफाई करते हुए पवित्र आत्मा से ये आशीष लेना चाहिए ताकि हम लोगों की तकलीफों का हाल निकाल सके। हैंडबुक्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमारे पास है उसका पालन करना चाहिए। पुस्तक के लिखावट में हमें सोचने की मौका और इंडिविजुअल टैलेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आज्ञा हमें मिले हैं अपने कॉलिंग्स को मैग्निफाई करने के लिए, वो हमें उलझन में नहीं डालता। विचार देने का मतलब नहीं है कि बढ़ाना, लेकिन उसका मतलब है सरल। एजेंसी एक अनंत आज्ञा है और इसलिए हमें खुद अपने लिए चुनना और सोचना है। हमें तकलीफों और सुलझनों सुलझाना चाहिए। हमें कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन अगर हम सुसमाचार की आज्ञा का पालन करें तो हम अपने गलतियों से सीख सकते हैं और दूसरों को समझ सकते हैं और अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। विचार देना है कि हम खुद सोच कार्य करें। प्रभु ने कहा है, ये ठीक नहीं है कि मैं सभी कार्य लिए आज्ञा दूं। जैसे हर कार्य के लिए मजबूर होना पड़े है, वह एक चतुर सेवक नहीं है। हमें भरोसा है कि तुम साहस को अपनाओगे। हमें भरोसा है कि तुम गिरजा के हद में रहकर सब कुछ करोगे। हमें भरोसा है कि तुम चतुरता के साथ एक दूसरे के सलाह करोगे कि दूसरों के जीवन में कैसे विश्वास और बयान बना सको। तीसरा, काम और जिम्मेदारी को बताओ। जिम्मेदारी लेना कि काम हो जाए और खुद काम करना, ये एक दूसरे अंतर है। एक मिसाल है कि वह दिन खत्म हो गया कि एल्डर्स कोरम प्रेसिडेंट को एक लगता था कि उनको होम टीचिंग पूरी तरह लेना चाहिए क्योंकि वहाँ लोगों ने अपना विजिट नहीं किया। ये सही है रिलीफ सोसाइटी प्रेसिडेंट के लिए विजिटिंग टीचिंग में। यह चतुरता नहीं है, सही तरह से होम टीचिंग और विजिटिंग टीचिंग भी नहीं हो रहा है। होम टीचिंग में नंबर या काम कर हो गए हैं रिपोर्ट देना, ये तो सिर्फ नंबर है, नाप है। होम टीचिंग लोगों को प्यार है और सेवा और पवित्र पिता का बच्चों के देखभाल करना। असाइनमेंट्स दे देना चाहिए और जिम्मेदारी भी इन सदस्य को अपना हक में जो है पूरी तरह से निभाना लेना चाहिए। सलाह, जुझाव, सहायता, साहस, लेकिन उनके लिए काम मत करो। अगर लोगों की बहाधांति करना है, चाहे अगर हमें अच्छी रिपोर्ट ना भी मिले। चौथा, दोष मत देना। यीशु क्रिस्ट के सुसमाचार में हमें साहस नहीं मिलता जब लीडरों और टीचरों दोष देते हैं। हमें साहस देना चाहिए प्यार और आशीर्वाद से, ना दोषी की तरह। मुझे ये सोच पसंद है, दूसरों को अच्छा करते हुए देखो। कुछ लोग हैं कि वे अपने सेवा में दोष कुछ महसूस करते हैं। ये हम तब महसूस करते हैं जब हम अपने वक्त, अपना ध्यान, मान और जो जरूरी है के बीच में बह जाएं। क्योंकि हम इंसान हैं, हम सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम सब कुछ चतुरता और नियम के मुताबिक करना है। इसका मतलब है कि हम एक जरूरत कार्य से ध्यान हटाकर दूसरे और ध्यान देना। कभी कभी हमें परिवार को पूरी ध्यान देना पड़ता है और वक्त हमारा पेशा पहले आता है और कभी हमारा चर्च कॉलिंग्स पहले आती है। सही संतुलन वही होती है जब सही वक्त पर हर कार्य को कार्यन की हम अगोरे और तैयार नहीं रहे कि अपना जिम्मेदारी आखिरी वक्त तक रहे। हमें ये याद रखना चाहिए कि क्रिस्ट हमारा गलती को माफ करने के लिए आया है अगर हम पश्चाताप करेंगे। आत्मा ने शांति देना आया, शांति मैं देता हूँ, वह बोला, मैं अपना शांति देता हूँ, इस दुनिया की तरह नहीं, हृदय में दूंगी नहीं। हृदय में दुखी ना हो, ना भी डरो, अपने अटोनमेंट के द्वारा ये कहता है। खुद को मेरे साथ जोड़ दो जैसे मैं तुम्हारे आत्मा को विश्राम मिलेगा। जैसे ही अटोनमेंट की शक्ति हमारे जीवन में आता है, हम समझने लगते हैं कि उद्धारकर्ता ने हमारे पाप अपने ऊपर लिए लिया है। हम चतुर होकर ये समझ के पश्चाताप जरूरी है कि हमारा पाप धो गया है। पांचवा, हमें सोचकर अपना वक्त, आमदनी और शक्ति और चिंता बांटना चाहिए। मैं तुम्हारे एक भेद की बात बताता हूँ। तुम में से कुछ लोग जान गए हैं, अगर नहीं तो अभी वक्त है। तुम्हारे परिवार में क्या जरूरत है या चर्च में क्या जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ हो गया है। हमेशा और कार्य कर बचा रहता है। परिवार में ध्यान, दूसरा पढ़ाई या तैयार करना, दूसरा इंटरव्यू लेना है, दूसरा मीटिंग में जाना है। हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। प्रेसिडेंट हिंकली ने कहा है, हमेशा काम उत्तम करो जितना कर सकते हो। मुझे ये लगता है कि पहले खुद को समझो और फिर अपने वक्त, अपना ध्यान और अपना रिसोर्सेस के चतुरता से दूसरे के सहायता में लगाओ। अपने परिवार को भी शामिल करो ताकि उन्हें भी आनंद जीवन मिले।
छठा,
एक सब तुम लीडरों के लिए जो सदस्य और नए कॉन्वर्ट को जिम्मेदारी देते हैं। प्रधान हिंकली ने कहा है कि नए सदस्यों को चर्च में जिम्मेदारी देना चाहिए। जो भी जिम्मेदारी न्यू कॉन्वर्ट को देते हो, उन्हें अभी भेद ना करना, लेकिन उनको ये मौका दो कि वे गिरजा के बारे में सीख सके और सभी सदस्य को साथ मिल जाए। उनको रिस्टोर्ड गॉस्पल में मजबूत करना, उनके बयान को बढ़ाते और सेवा करके। भाइयों और बहनों, हमें सरल रास्ते को अपनाना चाहिए परमेश्वर की राज बनाने के लिए। हमेशा अपने जीवन को सुधारना चाहिए। मुख्य काम गिरजा में ये है कि एक कार्य करके लोगों को मुलाकात करे, जैसे हमारा उद्धारकर्ता करता है। नहीं या नंबर मीटिंग्स कितना होता है या उनके ध्यान में, हमारा काम ये है कि हम लोगों की सहायता करें कि शांति खुशी मिल, जो सिर्फ सुसमाचार में मिलता है।
Our task is to help others find the peace and the joy that only the gospel can give them.
यीशु ने अपने शब्दों में साथ हासिल कर सकता है। वह बोला, अगर मुझे प्यार करते हो तो आज्ञा का पालन करो। आज भी जैकब का दिन जैसा है, मेरे सालन उनके तरह है, सलाह उनकी तरह है। पश्चाताप और पूरी हृदय से आओ और परमेश्वर को जगड़ लो जैसे वो तुमको जगड़ लेता है। परिवार से चतुरता से रहो, चतुरता से गिरजा का कॉलिंग्स को अपनाओ, चतुरता से वक्त को संभालो, चतुरता से अपने जिम्मेदारी को अपनाऊं, चतुरता से मेरे भाई और बहनों, और अब मैं क्या कहूँ? परमेश्वर हमें आशीष देता है ताकि हम यीशु क्रिस्ट को प्यार करें और चतुरता से उनके कार्य में सहायता करें। मेरे प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, ये उसका गिरजा है, उसके कार्य के लिए उसके शांति तुम्हारे साथ है और हमारे साथ रहे, हम चतुरता के साथ रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
We are grateful to the Tabernacle Choir.
हम टैबरनेकल क्वायर को इस सुबह के सुंदर संगीत के लिए धन्यवाद देते हैं और उनको भी जिन्होंने भाग लिया है। President James E. Faust, Second Counselor, First Presidency के अब इस सेशन के आखिरी वक्ता हो गए। President Faust के बाद क्वायर फिर गाएंगे, Israel, Israel, God is calling. Elder Richard G. Mains, 70K, फिर प्रार्थना करेंगे और कॉन्फ्रेंस को इस दोपहर के 2 बजे तक रोका जाएगा. प्रेजेंट फेस्ट.
एक बड़ी बहन ने मसीह का पीछा किया जैसे वो गैलिली के समुंदर के पर सिखाने के लिए गए ताकि उससे वो ज़्यादा लोग सुगन से हैं. वो पीटर के फिशिंग बोट में गए और उन्होंने किनारे से थोड़ी देर जाने के लिए कहा. तो मसीह ने बोलना बंद किया. उन्होंने पीटर को कहा कि जो अपनी पूरी रात सफलता के बिना मछली पकड़ रहा था कि झील के गहरे पानी में जाए. पीटर ने कहा, आज्ञा का पालन किया और इतनी मछली पकड़ी कि जाल टूट गया. उसने जेम्स और जॉन को मदद के लिए बुलाया. सभी मछली के ये संख्या किसे अचंभित थे. यीशु ने पीटर को कहा, फियर नॉट, फ्रॉम हेंसफोर्थ थाउ शैल कैच मेन. लूक ने फिर कहा, When they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. वो मसीह के चेले बन गए.
The word for disciple and the word for discipline both come from the same Latin root.
Discipline और discipling के शब्द एक ही लैटिन के जड़ से आते हैं. Disciple जिसका मतलब है pupil. वो अभ्यास पर जोर देता है, खुद के पकड़ पर, मसीह के पालन करके वो पक्के गुण में. जैसे पीटर, जेम्स और जॉन ने दिखाया था, जो सच में forsook all और followed him. चेले बनने का मतलब क्या है? वो मसीह के आज्ञा पालन की बात है. उसमें कई चीज हैं, चैस्टिटी, टाइथिंग, फैमिली होमिंग. उसका मतलब सभी नियमों का पालन करना है. उसका मतलब उसके नहीं करना है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है. इस जीवन में हर वस्तु का मूल है. मसीह के अनंत जीवन में शांति देने के लिए, वादे के लिए, चेला बनने के लिए लायक कीमत देना सब है. वो एक कीमत है जिसे हम देना पक्के से है. चेलेपन की जिम्मेदारियां वादे के आशीर्वादों से बहुत कम है. मसीह के चेलों के एक बुलावा मिला, सिर्फ एक दुनिया की चीजों के पीछा नहीं छोड़ना, पर उन्हें हर दिन क्रॉस को उठाना है. उसका मतलब है आज्ञा पालन कर इस धरती पर उनके गिरजे को बनाना है. उसका मतलब खुद के ऊपर पकड़ना भी है. यीशु ने हमें एक सिखाया है, If any will come after me, let him deny himself and take his cross up daily and follow me. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. एक प्यारे प्राइमरी के गाने के शब्द उनके साथ हैं, जो मालिक के साथ चलते हैं. मैं मसीह की तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं उनके रास्ते पर चल रहा हूँ, उनके प्यार कर रहा हूँ. मेरे सारे काम में हम उन मसीह के साथ कुछ चीजों के पाने के जीवन में उत्तर दे सकते हैं. यीशु हर जगह अच्छाई करते हैं. हम सर हर दिन परिवार के सदस्य के लिए, दोस्तों, अजनबियों के लिए अच्छा कर सकते हैं. यीशु एक अच्छा चरवाहा था जिसने अपने भेड़ों पर ध्यान दिया और घूमे हुए के लिए चिंता. हम अकेले और कम एक्टिव और कम को ढूंढ कर उन्हें दोस्त बना सकते हैं. मसीह के पास कई लोगों के पास दया थी. प्यारे लेपर के पास भी, हमारे पास भी दया हो सकती, जिससे हमें दिलाते हैं बुक ऑफ मोर्न की हमें मोर्न विद दोज हू मोर्न. मसीह ने बयान दिया उनके दिव्य मिशन के और उनके पिता के काम के लिए. हमारे लिए हमें खड़ा होना है भगवान के बयान देने के लिए. मसीह ने हमें निमंत्रण दिया, लेट द चिल्ड्रन कम अनटू हिम. हमारे बच्चों को हमारे ध्यान और प्यार को चाहते हैं. मसीह की चर्चा पालन करने वाले वो हैं जो जीवन देने के लिए तैयार होना चाहिए और किसी भी मौके जब मौका दिया मिला है. डॉक्टर इन कमन हमें राह देता है. लेट नो मैन बी अफ्रेड टू ले डाउन हिज लाइफ फॉर माय सेक, फॉर हूएवर हूसो लेथ डाउन हिज लाइफ फॉर माय सेक शैल फाइंड एन अगेन, एंड हूसो इज नॉट विलिंग टू ले डाउन हिज लाइफ फॉर माय सेक इज नॉट माय डिसिपल. ہم بک آف ایکٹس میں پڑھتے ہیں سٹیفن کے بارے میں جو پورے وشواس اور شکتی سے بھرے تھے اور انہوں نے کئی چمتکار کیا۔ سٹیفن نے جیروسلم میں ایک لڑائی سبھا کا سامنا کیا جنہوں نے اسے بھگوان کی برائی کرنے کا غلط آروپ لگایا۔ انہوں نے سامنے پرکٹ ہونے کے باوجود ان کے باوجود سٹیفن نے مسیح کی دیویتا کو بیان دیا، اور جب بھیڑ سے انہوں نے پشتتاپ کرنے کے لیے بولا اور انہوں نے بھگوان کی دیکھا اور بھگوان کو دیکھا کہ بھگوان کے سیدھے ہاتھ پہ کھڑے تھے، جیسے وہ مرے ان کے ہونٹوں پر آخری شبد تھے، لارڈ لے نا دس سین ٹو دیئر چارج۔ میکسیکو میں گرجے کے پہلے کے دنوں میں جو دو وشواسی نیتا جو مسیح کے چیلے تھے وہ اپنے وشواس کے لیے بھی شہید ہوئے۔ جن کی جانوں کو کھویا گیا وہ تھے رفائے مونرو اور ونسن مورالیس۔ میکسیکن کے ریولیوشن کے یدھ میں رفائل مونرو ایک پریسیڈنٹ تھے ایک سن مارکوس میکسیکو کے برانچ کے، اور ونسن مورالیس ان کے پہلے کاؤنسلر تھے۔ جولائی 17 کو 1915 میں ان دونوں کو زاپاتیتا نے پکڑ لیا، قیدی بنا لیا۔ انہیں کہا گیا ہے کہ انہیں چھوڑا جائے گا اگر وہ اپنے شستروں کو چھوڑ دے اور اپنے دھرم کو تیاگ دیں۔ برادر مونرو نے انہیں اپنے پکڑنے والے کو کہا کہ ان کے پاس شستر نہیں تھے، اور ان کے انہوں نے صرف ایک جیب میں سے ایک بک کو نکالا اور کہا، انہوں نے کہا، شریمانوں یہ صرف میرے یہ شستر ہیں جس کے پاس میں اپنے پاس رکھتا ہوں، وہ شستر ستیہ کا شستر ہے۔ جب کوئی شستروں کو نہیں پایا گیا، بھائیوں کو بری طرح سے مارا گیا تاکہ وہ چھپے ہوئے شستروں کی جگہوں کو بتا دیں، پر وہ شستر کہیں نہیں تھے۔ انہیں چھوٹی جگہ کے بھاری حصوں میں لے کے بنایا گیا جہاں ان کے ایک بڑے جھاڑ کے سامنے کھڑا ہو کے گولی مار دینے کے لیے تیار کیا گیا۔ پھر افسر نے انہیں سوتنتر دیا اگر وہ اپنے دھرم کو چھوڑ کے زبتیتا کے ساتھ آئیں گے، پر برادر مونرو نے کہا، میرا دھرم میری جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، میں اس کے لیے چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ پھر انہیں کہا گیا کہ اگر انہیں گولی مار دی جائے گی اور پوچھا جائے کہ ان کی کوئی آخری فرمائش تھی، برادر رافائل نے پوچھا کہ ان کے مرنے کے پہلے پرارتھنا کر سکتے ہیں وہ، اور پھر ان کے مارنے والوں کی اپستھتی میں وہ گھٹنوں پہ گئے اور انہوں نے پرارتھنا کی کہ جسے سب سن سکتے تھے کہ بھگوان انہیں آشیرواد دے اور ان کے پیاروں کو رکشا کرے، اور اس برانچ کی بھی جو بنا نیتا کے ہوگی۔ اب جیسے انہوں نے پرارتھنا کی پورا کیا، انہوں نے ان شبدوں کو دہرایا جب مسیح نے سولی پر ان شبدوں کو کہا تھا اپنے مرنے والوں کے لیے، فادر فرگیو دیم فور دے نو واٹ دے ناٹ ڈو۔ اس میں ان دونوں کو گولی مار دی گئی، برادر مونرو اور برادر مورالیس کو۔ کچھ سال پہلے میں میکسیکو گیا ایک سٹیک پریسیڈنٹ اس کو واپس بڑھانے کے لیے۔ جب میں نے اپنے انٹرویو کو کر رہا تھا تو مجھے برادر مونرو کے رفائل مونرو ان کے پریوار سے ملا، میں ان کے بیان سے بہت زیادہ خوش تھا۔ جب میں نے جانا کہ ان کے برادر مونرو کی اور کے پریوار کو کیا، تو انہوں نے بتایا کہ کئی مشنوں پہ جا چکے تھے اور گرجے میں وشواسی تھے۔ گرجے کے پہلے کے دنوں میں دوسرے چیلوں نے جوزف میں تمہارے کو اپنے گاسپل کے لیے اپنے جیونوں کو دیا۔ ایڈورڈ پارٹریج کے وشواس کو، جو گرجے کے پہلے بشپ تھے، اسے ڈاکٹر ان کاوننٹس میں لکھا گیا ہے۔ جولائی 20, 1833 میں ایڈورڈ گھر پہ اپنے کمزور بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے جنہوں نے حال ہی میں جنم دیا تھا۔ تین مابسٹر ان کے گھر میں آئے، انہیں سڑکوں پہ لگایا اور پھر انہیں چوراہے پہ جا کے کھڑا جہاں وہ چارلس ایلن کو لے گئے تھے۔ ایک 500 لوگوں کے موب نے ان سے مانگا کہ ایڈورڈ چارلس کو اپنے بک آف مورمن میں وشواس کو چھوڑنا ہے یا ان کے اس دیش کو چھوڑنا ہے۔ ایڈورڈ پارٹریج نے کہا، یہ جادی اگر مجھے اپنے دھرم کے لیے دکھ ملنا ہے، وہ پہلے کی لوگ سے کوئی زیادہ نہیں ہے، اور میں اس देश को नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी लिए मैंने दुख पहुँचाने की कोशिश किया है। अगर आप मुझे दर्द पहुँचाओगे तो तुम एक मासूम आदमी को दर्द दे रहे हो। उसके बाद उस मॉब ने एडवर्ड और चार्ल्स को फिर सर से पैरों तक उबलते टार को डाला जिसमें एक मांस को खाने वाला एसिड था। पॉवर जो स्मिथ ने 46 साल की उम्र में एडवर्ड की मृत्यु को बताया। उन्होंने जीवन खोया मिजूरो की प्रोसिक्यूशन में और वो उनमें हैं जिनके खून उनके हाथों पे होगा। एड पार्ट्रिज ने एक विरासत को छोड़ा वो जो एक बड़ी और अच्छी पीढ़ियों में रहती है। हम सबके लिए जरूरी है कि वो गिरजे के लिए मरना नहीं है पर उसके लिए जीना है। कई लोगों के लिए मसीह के जीवन जीना हर दिन मुश्किल होता है जान देने से भी ज्यादा। मैं युद्ध के समय को जानता हूँ जब कई लोग निस्वार्थ और बहादुरों के बहुत काम करते हैं जीवन के परवाह के बिना। पर जब युद्ध खत्म हो जाता है और वो घर आते हैं वो उनकी उस जीवन के हर दिन के कामों को नहीं झेल पाते हैं और उनके बोझे में को भी नहीं और फिर तंबाकू शराब ड्रग्स या दूसरे की बीमारियों में फंस जाते हैं जो उनके अंत में उनके जीवनों को ले लेती हैं। कुछ कहते हैं मैं एक साधारण आदमी हूँ, मेरे समाज में कोई औहदा नहीं है, मैं गिरजे में नया हूँ, मेरे गुण कम है, मैं बदलने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में अभी जी चुका हूँ, मैं क्यों कोशिश करूँ? बदलने के लिए कभी देरी नहीं हो सकती है। चेलेपन धन और उच्च अध्ययन के औहदों से नहीं आता है। मसीह के चेलों ने जिंदगी के हर क्षेत्र से आए पर चेलेपन के लिए जरूर चाहता है कि हम अपने पाप से मुंह मोड़ लें और प्रेसिडेंट मेम्पनियों के हिसाब से मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस को अपनाएं। वो सिर्फ पश्चाताप से आ सकता है जिसका मतलब अपने पाप को छोड़कर हर दिन सत्य और अच्छाई के पालनों के पीछे चलें, जैसे मसीह ने सिखाया है। What manner of man ought you to be? Verily I say unto you, even as I am. कई सोचते हैं कि चेलेपन की कीमत बहुत ज्यादा है। कईयों के लिए उसमें बहुत कुछ देना पड़ता है और वो इतना ज्यादा नहीं है जितना वो लगता है। आज्ञा पालन के द्वारा हम बहुत ज्यादा शक्ति पा सकते हैं उसे उठाने के लिए। Come unto me, all that ye are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and burden is light. हम चेले सच में तब बन सकते हैं जब विश्वास से कह सकते हैं कि हम उनके रास्तों पर गए हैं। चेलेपन के आशीर्वाद सबके लिए हैं जो उस कीमत को देने के लिए तैयार हैं। चेलेपन हमारे जीवन में मतलब लाती हैं जिससे हम भटकने के बजाय सीधे और पतले रास्ते पर आते हैं जो स्वर्गीय पिता के पास जाता है। चेलेपन हमें दुख के समय में आत्मा की शांति देता है और सेवा में जो सब हमें मसीह की तरह बनने में मदद करता है। All of which will help us to be more like Jesus. चेलेपन बनने से हमें अपने दिलों को बनने के लिए हमें दिलों और दिमागों को मसीह और उनके चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट लैटर डे सेंट्स के बचाने के ऑर्डिनेंसेस के ऊपर लाना है। चेलेपन के द्वारा हम प्रॉफिट जमोंद के गहरे मिशन को समझते हैं जो उन्होंने इन प्रिंसिपलों को विस्थापित किया। हम खुश होते हैं उन चाबियों के लिए और प्रीस्टहुड के लिए जिन्होंने प्रेसिडेंटों जो स्मिथ के द्वारा आज के प्रॉफिट प्रेसिडेंट गॉर्डन हिमली तक को दिया गया है। हम आभारी हैं मसीह के चेले बनने के लिए कि इससे हम उनसे शांति के वादे को पा सकते हैं आनंद के साथ में और संपूर्णता के साथ। हमारे चेलेपन के साथ हम आत्मिक शक्ति को पाते हैं जिससे हम जिंदगी की मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। इस जीवन और अनंतता के सबसे बड़े आशावाद हैं यीशु मसीह के चेले के रूप में जिन्हें गिना जाने के लिए। मेरे पास इस सत्य के गहरे बयान है जिसका मैं बयान देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Israel, Israel, God is calling, calling thee from lands of
Our beloved Heavenly Father,
हमारे प्यारे पिता, हम आपके समक्ष में आते हैं अंत में, धन्यवाद देते हैं कि आपके प्यार प्रार्थना करने के लिए, और धन्यवाद देते हैं इस ज्ञान के लिए और म्यूजिक के लिए, और जो जो बयान दिया गया है और जो हमें आज्ञा मिला है, प्रार्थना करते हैं कि हम कि सभी को आनंद सिद्धांत पे हम चले। हम आपको ये ध्यान देते हैं अपने प्रॉफिट के लिए और आशीष चाहते हैं उसके लिए, और उसको आशीष देता कि वो हमेशा हमारे साथ रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रेजेंट मॉनसून और प्रेजेंट फास्ट के लिए करते हैं और सभी चेलों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, हम धन्यवाद देते हैं उसके जिंदगी के लिए, उसके कार्य के लिए और उसके शिक्षा के लिए और उसके उद्धार के लिए और खासकर के लिए उसके अटोनमेंट के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पूरे दिलों से कि हम वो दे रहे कि उसके आशीष के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन।
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications.
Any broadcast of Bonneville Communications के एक public सेवा के रूप में दे रहा है, बिना इजाजत के recording copy और दूसरे इस्तेमाल मना है।